काव्य भाषा यूसुफ जुलेखा जनसाधारण में प्रचलित अवधि में रचित काव्य कृति है। इसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों की ओर झुकाव नहीं है, बल्कि इसमें तत्कालीन अवधि का रूप भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। यूसुफ रैन सपन एक देखा, बहुर पिता तैं कहां सरेखा, जानहु ग्रह एकादश आए, रवि शशि मिले मोहि शीस नवाए, सुन याकुब सुखीन हुलासा, राजपाठ सुख भोग विलासा। यह अवधि पूर्वी अवधि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का पूर्वी अवधि है। इसमें बहुरी सरेखा जानहु हुलासा आदि कुछ ठेठ अवधि के शब्द प्रयुक्त हैं, किंतु ठेठ प्रयोगों का जैसा बाहुल्य जायसी की पद्मावत में दिखाई पड़ता है, वैसा यहाँ नहीं है। इस रचना में यत्र तत्र ब्रज भाषा का स्फुट प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग सवैया छंदों में मिलता है, जिसे कवि ने कवित्त कहा है। षड ऋतु वर्णन और बारह मासा वर्णन में ब्रज भाषा का आकर्षण विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। एक नमूना देखिए। बोला ही मोर वियोग भरे, बन कोकिल कूक हिया निज झूले, झूले ही श्याम बिना घन श्याम, घमंड से मेघ चहू दिस दूल है, डोला ही आसन जोगी जति के, निसार महारस घूंघट खोलही, घोल ही मेघ वियोगिनी को दुख, डूब ही चातक बोल न बोल ही। इस कृति में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग प्रायः नहीं है, पात्रों के नाम ही उस भाषा के प्रमाण हो सकते हैं। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न करना इसलिए स्मरणीय है कि रचनाकार मुसलमान है और उसने अपने काव्य के लिए शामी कथा का चुनाव किया तथा प्रथम पांडुलिपि फारसी लिपि में तैयार की। फिर भी संपूर्ण कृति में नेस्त, सुल्तान, दीन, दीवान, खिताब आदि अरबी फारसी के एकाध शब्द ही मिलते हैं, यथा पहला दूजे उमर खिताब सुहाए, दूसरा नेस्त हेस्त समकरे सरेखा, तीसरा दीन नबी कर प्रोहित कीन्हा। कवि की भाषा नीति यद्यपि विशुद्धतावादी नहीं है, तथापि उनकी भाषा में अनुज, दुहिता, मंत्र, द्रुम, सावक जैसे सहज तत्सम शब्द भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में दिखाई पड़ते हैं। लोकमानस की पकड़ के लिए पीरा, थोरा, मोख, मुकुति, सोग, अग्नि, सारग, सरवन जैसे तद्भव शब्दों के प्रयोग कवि ने मुक्त भाव से किए हैं। इन शब्दों पर ध्यान देने से लगता है कि जैसे प्रेम की आँच पाकर उनकी कोरें समाप्त हो गई हैं। काव्य गुण और शब्द शक्ति की दृष्टि से यूसुफ जुलेखा में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता है, ओज गुण का प्रायः अभाव है। फिर भी जब यूसुफ के भाई उसको अपने साथ वन ले जाने के लिए आग्रह करते हुए पिता याकूब को यूसुफ की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, तब उनके कथन में ओज का समावेश हो जाता है। यथा हम यक यक अस बल बल बंडा, हैं गयद बलि भुज दंडा, भागे सिंह हाक जब मारे, दसो बंधु दस दिग्गज तारे, मैं मंत गयंद न आन ही लेख हैं, कांप ही गैंडा सिंह विशेख हैं, का हम सोह जो करे सुहाना, वृथा सोच तुम ये समाना। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से शब्द शक्तियों को भी ढूंढा जा सकता है। अभिधात्मक कथन कहीं भी देखे जा सकते हैं, पर लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण भी कम नहीं हैं। आलोच्य कृति में उपादान लक्षणा के उदाहरण तो प्रायः नहीं मिलते, पर लक्षणा लक्षणा के उदाहरण पग पग पर मिलते हैं। शेख निसार अपने काव्य में लक्षणा लक्षणा का प्रयोग अधिक करते हैं। निस्दिन रहे लगाए छाती, तथा सोए रहे नित मोती झरे, जैसे उदाहरणों में लक्षण लक्षणा का प्रयोग हुआ है, इसमें व्यंजना की भी प्रधानता है। यथा जानहु ग्रह एकादश आए, रवि शशि मिली मोहि शीस नवाए, इसमें लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग भाषा के सहज अंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनसे जहाँ कविता के अर्थ गांभीर्य का समावेश हुआ है, वहीं भाषा में उक्ति वैचित्र और जीवंतता भी आई है। कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों के उदाहरण निम्न अंकित हैं। मुहावरे, पहला पाट न हिया समर चित बंधा, दूसरा काटेव खाए सबही घर बारा, तीसरा दहके देह और तपे करेजा, चौथा भागे बैदन कह दिन गाढ़े, पांचवा हिया बजर का भयो हमारा। लोकोक्तियाँ, बैरी छोट न जानिए छोटे दिन और रात, दूसरा जस दीपक संग फिरे पतंगा। कवि ने आलोच्य कृति में पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग बहुत कम किए हैं, फिर भी आदिखंड के वंदना प्रसंग में अलख, तुरिया, अनहद, निर्गुण, सगुण, मुक्ति जैसे कतिपय पारिभाषिक शब्द देखे जा सकते हैं। वास्तव में शेख निसार की काव्य भाषा चमत्कार प्रधान न होते हुए भी पाठक को दूर तक प्रभावित करती है, और साथ ही कवि के भाषा विषयक उदार दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है।